ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं, www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 अप्रैल 2020 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्ण पथ, हबकूक। ऐ मेरे प्रभु यहोवा, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। उत्तरदायी अध्ययन, भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिटाई के पापों से भी बचाए रख। वो मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं, मैं अधोलोक की स्थिति में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धार्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरुण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुले हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के पीछे यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे जिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मत्ती। और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार उपचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। मत्ती। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की। जो जुलजत्ता स्थान कहलाता है वहां पहुंचकर उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमथिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लाश लेकर उसे उजूल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मत्ती। सबत के दिन के बाद हफ्ता के पहले दिन पोप हटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भवंडल हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के नियन उजूल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतिक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो सूली पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो बड़े भय और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य। और वो उनकी आंखों से सब आंसू पूंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य पाप बीमारी और मृत्यु के लिए अक्षम है। वास्तविक मनुष्य पवित्रता से वादा नहीं कर सकता, ना ही परमेश्वर जिसके द्वारा मनुष्य का विकास किया गया है पाप करने की क्षमता या स्वतंत्रता प्रदान करता है। सारी वास्तविकता ईश्वर और उसकी रचना सामंजस्य और शाश्वत में है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बना है उसके द्वारा बनाया गया है। इसीलिए पाप बीमारी या मृत्यु का एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है। अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत कराती है, जब तक कि भगवान उनके भेष के बंद नहीं करते। वो सत्य नहीं है क्योंकि वो भगवान के नहीं है। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वर मन या शरीर के सभी अंतर ज्ञान भ्रम है। ना तो वास्तविकता और ना ही पहचान के बावजूद वास्तविक और समान प्रतीत होते हैं। मन का विज्ञान सभी बुराई का निपटारा करता है। सत्य ईश्वर त्रुटि का जनक नहीं है, पाप, बीमारी और मृत्यु को त्रुटि के प्रभाव के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। मसीह पाप के विश्वास को नष्ट करने के लिए आया था। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। मसीह एक आदर्श सत्य है जो क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से बीमारी को, पाप को ठीक करने के लिए आता है और ईश्वर को सभी शक्ति प्रदान करता है। यीशु उस व्यक्ति का नाम है जिसने बीमारों और पापों का उपचार करके मसीह को प्रस्तुत किया, जो कि अन्य सभी पुरुषों की तुलना में अधिक परमेश्वर का सच्चा विचार है। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है और ये कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्रिश्चियन साइंस को ना समझकर बीमारों को आमतौर पर इस पर बहुत कम विश्वास होता है, जब तक कि वो इसके लाभकारी प्रभाव को महसूस नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि विश्वास ऐसे मामलों में मरहम लगाने वाला नहीं है। बीमार अनजाने में इसके खिलाफ होने के बजाय दुख का पक्ष लेते हैं। वो इसकी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, जबकि उन्हें इससे इनकार करना चाहिए। उन्हें धोखेबाज इंद्रियों की गवाही के विरोध में प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के लिए मनुष्य की अमृता और शाश्वत समानता को बनाए रखना चाहिए। महान नमूने की तरह मरहम लगाने वाले को बीमारी के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा को शारीरिक इंद्रियों के झूठे सबूतों को साबित करने और मृत्यु डर और बीमारी पर अपने दावों को साबित करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक ही सिद्धांत पाप और बीमारी दोनों को ठीक करता है। जब दिव्य विज्ञान एक कार्तिक मन में विश्वास को खत्म कर देता है और भगवान में विश्वास पाप में और उपचार के भावतिक तरीकों में सभी विश्वासों को नष्ट कर देता है, तो पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाएंगे। जब हम अशांत मन को संबोधित करके और शरीर को कोई ध्यान न देकर बीमारी को दूर करते हैं, तो हम ये साबित करते हैं कि अकेला विचार ही दुख पैदा करता है। नश्वर मन सभी पर शासन करता है जो नश्वर हैं। सत्य बीमारी, पाप और मृत्यु को नियमित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाता है, क्योंकि ये सत्य के लिए अज्ञात हैं और उन्हें वास्तविकता के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। भगवान के प्रति बहुत अप्रिय मृत्यु पहले से ही हड्डी और मांस के तेजी से बिगड़ने में पाया जाता है, जो आदम से हवा बनाने के लिए आया था। भौतिक जीवन और बुद्धिमत्ता में विश्वास हर कदम पर बदतर होता जा रहा है, लेकिन त्रुटि का एक महत्वपूर्ण दिन है और इसके अनंत तक कई गुना बढ़ जाता है। मनुष्य को त्रुटि के अपने ज्ञान के रूप में जांचकर सत्य महिला को उसकी गलती कबूल करने की मांग करता है। वो कहती है, सांप ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। जैसा कि नम्र तपस्या में ये कहा जाता है कि मेरी गलती के लिए ना तो मनुष्य और ना ही भगवान जिम्मेदार होंगे। वो पहले ही जान चुकी है कि सांप शारीरिक समझ है, इसलिए वो पहली बार मनुष्य की भावतिक उत्पत्ति में विश्वास को त्यागने और आध्यात्मिक निर्माण करने को है। इसके बाद महिला को यीशु की मां बनने और पुनर्जीवित आधार करने को देखने के लिए साक्षम किया गया, जो जल्द ही ईश्वर की रचना करने वाले मृत्युहीन व्यक्ति को प्रकट करने वाली थी। अपने शारीरिक दफन के 3 दिन बाद उसने अपने शिष्यों के साथ बात की। अत्याचारी लोग और अमर सत्य और प्रेम को एक कब्र में छिपाने में असफल रहे। परमेश्वर की जय हो और संघर्षशील दिलों को शांति मिले। मसीह ने मानव आशा और विश्वास के द्वार से पत्थर को लुढ़का दिया और ईश्वर में जीवन के रहस्य विद्घाटन और प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें मनुष्य के आध्यात्मिक विचार और उनकी दिव्य सिद्धांत प्रेम के साथ संभवता एक मानसिक रूप से उन्नत किया। उसका जी उठना उनका भी जी उठना था। इससे उसे खुद को और दूसरों को आध्यात्मिक निराशा से दूर रखने और ईश्वर में असीम संभावनाओं की धारणा में अंधे ना होने में मदद मिली। उन्हें इसकी जल्द आवश्यकता थी। जल्द ही उनका मालिक वास्तविकता के आध्यात्मिक क्षेत्र में फिर से उठेगा और उनकी आशंका से भी बहुत ऊपर जाएगा। अपने विश्वासियों के पुरस्कार के रूप में वो उस परिवर्तन में भावतिक अर्थों के लिए गायब हो जाएगा जिसे तब उद्गम कहा जाता था। जब यहाँ ये जान लिया जाता है कि बीमारी जीवन को नष्ट नहीं कर सकती है और मृत्यु से पाप या बीमारी से मृत्यु को बचाया नहीं जा सकता है, तो ये समझ जीवन के नएपन में बदल जाएगी। ये या तो मरने या कब्र से डरने की इच्छा में महारत हासिल करेगा और इस तरह नश्वर अस्तित्व को नष्ट करने वाले महान भय को नष्ट कर देगा। मृत्यु में सभी विश्वासों का त्याग और इसके डंक के डर से स्वस्थ और नीतिकता के स्तर को अपने वर्तमान अठान से ऊपर उठाया जा सकता है और हमें ईश्वर में जीवन के प्रति असीम विश्वास के साथ मसीही धर्म के झंडे को धारण करने में सक्षम करेगा। पाप मौत लाया और पाप के गायब होने के साथ मौत गायब हो जाएगी। मनुष्य अमर है और शरीर मर नहीं सकता क्योंकि पदार्थ के पास समर्पण करने के लिए कोई जीवन नहीं है। पदार्थ मृत्यु बीमारी और पाप नाम की मानवीय अवधारणाएं नष्ट हो सकती हैं। निहेश्वर थाता अच्छाई दया न्याय स्वस्थ पवित्रता प्रेम स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करें और पाप मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएगी जब तक कि वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने भविष्यवाणी न्याय करने निंदा करने परमाश देने प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।